आप जरा सर आइए इधर, अखलाक नबी पे। आपके घर में आकर कोई इस तरह की बातें आपको सुना जाए, आप क्या करेंगे? लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बड़ा आला था। आज का अखलाक नबी का वाकया ये आपके लिए तोहफा है, मगर मेरी जेब तो खाली है। एक सहाबी थे जिनका नाम अब्दुल्ला था और लकब हमार था। वो अल्लाह के रसूल से शदीद मोहब्बत करते थे। कभी कभार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कोई तोहफा भी पेश कर देते। एक मरतबा एक अराबी यानी देहाती बद्दू शहद लिए हुए मदीना तय्यबा में फरोख करने के लिए आया। अब्दुल्ला ने इसे ये शहद खरीदा और रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, यह आपके लिए हदिया है, तोहफा है। और आप सब भी जानते ही हैं कि अल्लाह के नबी सदका कबूल नहीं करते थे, लेकिन तोहफा कबूल करने से इनकार नहीं करते थे। ये सुन्नत है, इसीलिए हम कहते हैं कि तोहफा ना लाइए, क्योंकि जब तोहफा आ जाता है तो उसको इनकार करना सुन्नत के खिलाफ है। खैर, आपने अब्दुल्ला का तोहफा कबूल कर लिया। थोड़ी देर के बाद शहद फरोख करने वाला बद्दू अब्दुल्ला से इसकी कीमत मांगने लगा। मगर अब्दुल्ला तो गरीब आदमी थे, उनके पास कोई दिरहम नहीं थे, दिनार नहीं थे। वो शहद बेचने वाले को अल्लाह के नबी की खिदमत में लेकर हाजिर हुए और अर्ज की, अल्लाह के रसूल इसे इस शहद की कीमत अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलम तुहदी ही इलैया, क्या तुमने मुझे ये तोहफा नहीं दिया? यानी अभी तो तुम मुझे गिफ्ट के तौर पे दे रहे हो, मैंने कबूल कर लिया है, तो अब तुम बंदे को ले आए हो कि इसको अब आप पे कर दे। बद्दू था ना। अब्दुल्ला कहने लगे, ठीक है, मैंने आपको तोहफा दिया था, मगर जिससे ये तोहफा खरीदा था इसे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अब आप जाएं किसी दुकान से पर्स उठाकर किसी को तोहफे में दे दें तो वो तो पैसे मांगेगा ना, ये जज्बातियत होती है। खैर, कोई और होता तो अब्दुल्ला के इस रवैये पे बिगड़ जाता, मगर अल्लाह के रसूल का हुस्न अखलाक देखिए। क्या आपने ये सुनकर क्या किया होगा? आप मुस्कुराए और अपने साथी को इस तरह खुश कर दिया कि बद्दू को मुआवजा देने का हुक्म फरमाया। अब जरा से इस बात को अब लीजिए, यानी हमारे झगड़े अमूमन जो खानदानी या दोस्ती की बुनियाद पे होते हैं, इन चीज़ों पे होते हैं। फिर हम इन बातों को सुनाते, उछालते, बढ़ाते, ये किया, तौबा करो, नहीं। अब अब्दुल्ला के अंदर एक कमजोरी और खामी थी, और वो क्या थी? कि वो शराब का रसिया था। इस्लाम से पहले लोगों में शराब नोशी की दावत आम थी। इस्लाम लाने के बाद उन्होंने इस उम्मुल खबाई से तौबा तो कर ली, मगर किसी वजह से अब्दुल्ला इस आदत से छुटकारा ना पा सका। इसे कई बार अल्लाह के नबी की खिदमत में लाया गया कि इसने शराब पी है। आपने हुक्म दिया कि इसे कोड़ों, जूतों और टहनियों से मारा जाए। चुनाच इसे कुछ सजा देकर ताजीर लगाकर छोड़ देते, यानी आपको इख्तियार था कि आप उसकी क्या सजा देते। एक दिन ऐसा हुआ कि अब्दुल्ला को फिर शराब नोशी के इल्जाम में लाया गया। जब उसे सजा मिल गई और वो अपने घर चला गया, तो एक सहाबी के मुंह से ये कलेमात निकल गए, अल्लाहुम्मल अनहु वमा अक्सरा मा युतावीही। या अल्लाह, इस पर लानत कर, ये शख्स कितनी ही बार इस जुर्म में लाया गया। ये बार बार शराब पीता है, फिर सजा भी पा लेता है, फिर भी दोबारा वही काम करता है। अल्लाह के नबी के करम, मेहरबानी, शफकत और आला अखलाक को देखिए, आपने उस सहाबी को रोका, ला तल अनुख, इस पर लानत मत भेजो, क्योंकि फवल्लाही मा अलिमतु अन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, अल्लाह की कसम मैं इसके बारे में इतना ही जानता हूँ कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। फिर आपने फरमाया, ला तकूनु औनन लिशैतानी अला अखी को, अपने भाई के खिलाफ शैतान की मदद ना करो। हैरत नहीं हुई आपको? ये सही बुखारी में 6780 नंबर की हदीस है और असदुल गाबा किताब में और अल साबा में भी ये वाकया मौजूद है। आप और मैं क्या कहें, हमारी तो जुबानें हाथों में छुरियों की तरह चलती। फतवे देते हैं, जहन्नमी, काफिर, मुशरिक, फुलाना, फासिक, ऐसा बसा। अब इस पे आप और मैं कोई फतवा नहीं दे सकते, क्योंकि ये नबी का अमल है। आज अगर हुकूमत वक्त अगर किसी शराब पीने वाले को पकड़ती है, तो उसके ऊपर वही सारी लाइबिलिटीज हैं जो इस्लाम में हैं। बट आपका मेरा काम कि आप और मैं, अल्लाह ना करे आज किसी को शराब पीता देखें तो क्या हम उसको कोड़े लगा सकते हैं, ताजीर कर सकते हैं? तो खामोश रहिए, ये है अदब और अखलाक। हम तो सारा इख्तियार अपने हाथ में लेके मालिक यौम दीन से पहले ही सारे फैसले दुनिया में करना चाहते हैं। कभी लोगों की बुराइयों के पीछे मत पड़िए, बुराई है भी तो भी ना पढ़िए, और बुराई नहीं आपको वो बुराई लगी, आपको ख्याल है, चुप कर जाइए, आप अल्लाह और बंदे के बीच में से निकल जाइए। दुनिया में लोग शराब नहीं पी रहे, लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, अल्लाह देख रहे, अल्लाह तहम्मुल वाला, अल्लाह जाने वो जाने। नबी ने उसको इतना देखिए ओवरलुक किया, आप में होते तो उस दौर में क्या करते, घरों घरों में बातें होती, कानों में बातें, ये वो है, और आज की जबान में कह दूं बे सोचे समझे उसके इस अमल को आगे फॉरवर्ड कर देते। ये हमारी आज की दीनदारी है, अल्लाह हमें हिदायत दे। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें प्यारे नबी की सुन्नतों पे चलने वाला बना दे। आज चलते हैं पारे पे। सबसे पहले 23rd पारे का पिछले पारे से क्या रब्त है कि इसके बिल्कुल पीछे आखिरी हिस्से में सूरत यासीन शुरू हो चुकी है। और सूरत यासीन क्या थी आप देखिए, उसका भी मौजू यही है, इन्नकल मिनल मुरसलीन। ये जो हमने मोहम्मद अरबी टॉपिक में चीजें पढ़ी है ना, घर घर लोग नबी के खिलाफ थे, बातें ये है वो है। तो अब आगे इसका अगला हिस्से में अल्लाह एक वाक्या सुनाकर, हबीब नाम का शख्स है, उसकी बात बताएंगे कि ये शख्स सच्चा दिया, और जब इखलास अंदर आता है, जब ईमान आता है तो क्या होता है। पारे का जो मेन थीम मरकजी मजमून क्या है, आजमाइश बकदर ईमान। लिख लीजिए, ईमान और आजमाइश साथ साथ। ज्यादा ईमान होगा तो बड़ी आजमाइशें आएंगी, थोड़ा ईमान होगा तो छोटी आजमाइशों पे भी घबरा जाएंगे। हमारा तो हाल ये कि हम नेकी का कोई काम शुरू करें और हमारी मेड चली जाए तो हम कहते हैं बड़ी आजमाइश आ गई है मेरे ऊपर जब से कुरान क्लास में आना शुरू हुई हूँ। और यहाँ क्या है, लोग जान ले रहे हैं और वो शख्स कह रहा है कि या लई त कौमी या लमू नबी मा गफर अली रब्बी व जालनी मिनल मुकरमीन। तो जब अंदर सच्चा ईमान आता है तो वो बोलता है, लिखिए, ईमान गूंगा नहीं रह सकता, ईमान बोलता है, इजहार मांगता है। जैसे जमीन के अंदर से एक बीज जब फूटता है तो वो इजहार मांगता है, दो ईंटों के बीच में कच्ची कच्ची जगह भी नजर आ जाती है ना, तो उसके अंदर से भी वो डंठल, वो जो छोटी सी जगह होती है ना, वो निकल के पौधे को बाहर ले आती है। इस पूरे पारे में आपको ईमान के इजहार के क्या खूबसूरत पॉइंट दिखने वाले हैं, यानी इस पारे के थीम में दूसरों के लिए तड़पना है, जैसे हबीब नज्जार तड़प रहा है। आइए जरा इस पूरे पारे के मजामीन पे बात करें। तो सूरत यासीन जो पीछे से शुरू हुई थी, अगर आप देखें तो उसकी पहली तीन आयात इमामुल अंबिया की नबूवत पर दलील है। फिर आयत नंबर 13 से तीन रसूलों का किस्सा, वद्रिब लहु मसलन असहाबल करिया वाला था, ये पीछे हुआ। और फिर हबीब नज्जार की हमदर्दी आयत 20 से, वजा मिन अक्सल मदीना थी। और अब इस बारे में वमा ली अला अबुदुल्लज़ी फतरनी वलैहि तुरजान, ये है फितरत की पुकार, मैं कैसे उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया। तौहीद फितरत में गुंदी हुई है, सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम ही नहीं, आज भी हर बच्चा जो पैदा हो रहा है, चाहे वो किसी काफिर माँ के घर में, किसी मुसलमान के है, किसी हिंदू, किसी ईसाई, किसी यहूदी, किसी भी दीन के नाम पे, किसी एथियस के घर में एक बच्चा पैदा हो जाए और अगर उसको जुबान मिल जाए तो वो यही कहेगा, इन्नी अब्दुल्ला बमाली अला अब्दुल्लजी में ये मैसेज पढ़ेंगे। फिर कील अदखुलिल जन्नत, के उसको जन्नत में दाखिल कर दिया गया, इससे क्या मुराद है, शहादत का आला मुकाम। अल्लाह ने उसको आम लोगों से हटके मरते ही जन्नत में भेज दिया। आप देखिए कि जो आलम बरजख है ना, ये एक छुपा हुआ मामला है, लेकिन अहदीस में बहुत खुला हुआ। मरने के बाद कयामत के आने तक का वक्त हम सबको बरजख में गुजारना है, आम लोग वो कब्र में गुजारते हैं, लेकिन शहीद का वो वक्त जन्नत में होता है। तो यहाँ शुहदा के लिए खुशखबरी भी है और उनकी शान भी है। फिर आए 28 से आगे, मुशरिक कौम का इंजाम है कि जिन्होंने हबीब की जान ली, अल्लाह ने उनको भी नीस्तो नाबूद कर दिया। फिर आगे क्यामत के दिन हाथ और पाँव के गवाही देने की बात आएगी। फिर मुशरिकीन का अल्लाह के नबी को रिजेक्ट करना और आपको शायर करार देना। उसकी तरदीद है। फिर आयत 77 में इंसान को उसकी असल दिखाई गई, अन्ना खलकनाहु मिन नुतफा, कि एक नुतफा है इंसान, पानी की एक बूंद से पैदा हुआ इंसान कितना झगड़ता है अल्लाह के मामले में। फिर उसके बाद आगे हम देखेंगे सूरह सौफात, पहली आयत से ये नाम मिलता है, मक्की सूरत, तौहीद, रिसालत और क़यामत इसका मौजू है, और मुशरिकीन का गलत अकीदा, फरिश्ते अल्लाह की बेटी हैं, उसका रद्द है सूरह सौफात में, और ऑर्गेनाइज्ड होने और सफ बंदी की बात है पहली इब्तदाई आयात में ही मुशरिकीन की तरदीद करते हुए। फिर अहले जन्नत का तذکرہ इसमें आएगा, फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो अहले जहन्नम का जिक्र होगा, फिर इस सूरत में हजरत नूह का किस्सा आएगा, हजरत इब्राहिम का किस्सा आएगा, और सबसे खूबसूरत किस्सा जिसमें ईमान का इजहार दिखेगा कि छुरी बाप के हाथ में और गर्दन बेटे की, और इम्तिहान में कामयाबी, ये दोनों बाप बेटा कामयाब हो गए ईमान की आजमाइश में। वहां आप देखेंगे कि ईमान इजहार चाहता है, आजमाइश भी ईमान के मुताबिक आती। इब्राहिम का ईमान इस काबिल था कि उनको बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने का हुक्म दिया जाता, और वो भी मुबहम, खुल के नहीं दिया, ख्वाब में दिखाया। लेकिन जब ईमान आता है ना, तो इंसान इशारे को भी हुक्म समझता है, और जब हमारे लोगों जैसे ईमान होते हैं ना, तो वाजे हुक्मों को जान के भी कहते हैं कुरान में किधर लिखा है, अच्छा हुक्म है हराम है, अच्छा मकरूह तो नहीं, अच्छा ना कर लें तो क्या, ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं। ईमान आता है तो फिर तो बंदा उछल के अल्लाह के हुक्म पे लब्बैक कहता है। बहरहाल फिर आगे थोड़ा चलेंगे तो हजरत यूनुस की कौम का किस्सा आएगा इसमें दोबारा, और फिर मुशरिकीने मक्का की तरदीद फरिश्तों के बेटियों वाले तसव्वुर पे, यानी अल्लाह ने कहा कैसा नहीं होता, और आखिर में फिर सूरत के सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसमें अल्लाह तआला की तारीफें बयान की गई। किसी भी महफिल से उठते हैं तो ये पढ़ना होता है, यहाँ आप देखते हैं कि हर मेरे आले पढ़ाने वाला आखिर में यही कलेमात कहता है। फिर उसके बाद सूरत स्वाद, ये आज जो मोहम्मद अरबी का सेशन था ना, वो आपको सूरत स्वाद के शुरू में मिलेगा, मुज़ाकरात में नाकामी, और वही सारी बात जो के हमने कर ली। फिर इसमें हजरत दाऊद की आजमाइश का जिक्र है, ईमान के साथ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तस्करा है, ईमान से उसका ताल्लुक है। हजरत अय्यूब के ईमान की आजमाइश है, मतलब बीमार हुए और उस पर सब्र किया। फिर उसके बाद सूरह जुमर का कुछ हिस्सा इस बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें आखिर में चलें तो दो गिरोहों का तस्करा है, और एक जन्नती और एक जहन्नमी, उसमें मुशरिकीन के गलत अकायद की तरदीद है, और इस्लाम के लिए शरह सदर हो जाए इस दुआ का तस्करा भी है, मोमिन मवाहिद और मुशरिक की मिसाल भी है, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम इसका हक अदा कर सकें। अब आप देखिए कि ये जितना वक्त हम लगाते हैं, आपको लगता है ये वर्थ इट है कि आपका जहन इसके साथ एकदम नेविगेट नहीं हो जाता? बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिलता है हर साल। ये जो शुरू का तकरीबन 40 मिनट का स्लॉट होता है, मैंने सोचा तो आधा घंटा होता है ऑलमोस्ट, लेकिन वो फिर भी 5-10 मिनट ऊपर जाता है। यकीन करें इसके बाद पारा खुलकर सामने आ जाता है, और अगर हम सिर्फ बोलते ही जाए ना, तो आपके अंदर मालूमात तो इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन आप उससे कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं लेते। तो आइए अब जरा तर्जमे पे फोकस करते हैं, सूरह यासीन की आयत नंबर 22 से। वमा लिया लअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैही तुरजऊन, और मुझे क्या हो गया है कि मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या मैं इसे छोड़कर ऐसों को मबूद बनाऊं कि अगर अल्लाह रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो इनकी सिफारिश मुझे कुछ भी नफ़ा ना पहुंचा सके और ना वो मुझे बचा सके, और अगर ऐसा हुआ फिर तो मैं यकीनन खुली गुमराही में हूँ। मेरी सुनो, मैं तो सच्चे दिल से तुम सब के रब पर ईमान ला चुका हूँ। ईमान चुपता नहीं है, सच दिल में आ जाए तो जुबान पे आ ही जाता है। अब इस बंदे ने ईमान का इजहार किया, यूसुफ नजार का किस्सा है, जवाब क्या आया, कील अदखुलिल जन्ना, इससे कहा गया कि जन्नत में चला जा, कहने लगा काश मेरी कौम को भी इल्म हो जाता कि मुझे मेरे रब ने बख्श दिया और मुझे बाइज्जत लोगों में से कर दिया। यहाँ नोट कीजिए, हदीस में आता है दीन और नसीहा, मोमिन मुखलिस होता है। अगर आपके दिल में दूसरों की तड़प नहीं है ना, तो ईमान कमजोर है। आपका ईमान जब एक खास लेवल पे पहुंच जाता है ना, तो आपको अपने से ज्यादा दूसरों की फिक्र पड़ जाती है। इस शख्स को लोगों ने मारना चाहा और मार दिया तौहीद पे। वही बात जो हमने आज मोहम्मद अरबी में पढ़ी कि जो इस्लाम का इजहार करता है लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। आज भी जो ईमान का इजहार करेगा लोग उसके दुश्मन हो जाएंगे, पक्की बात है। आप मार दिया, इसकी रूह जन्नत में चली गई, क्योंकि शहीद की रूह जन्नत में चली जाती है। ये क्या करता? हा, मैं कामयाब हो गया, देखो देखो इनको बताओ इनको करो ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नसख कौमन हैयन व मैयतन, इसने जीते जी भी कौम की खैर ख्वाही की और मरने के बाद भी खैर ख्वाही की। क्या पता चला कि बंदा मोमिन ये हिरस रखता है कि जिनको मैं दावत दे रहा हूँ दीन की, वो मेरी कामयाबियों को देखकर भी दीन पे आ जाए, मेरी नाकामियों को देखकर भी आ जाए। कहने लगा कि कभी अल्लाह ताला आप उनको इसका इंजाम बता देना, मेरा कितना अच्छा इंजाम हुआ, तो वो समझ जाएंगे कि मैं हक पे था, तो फिर वो मेरी मुखालफत छोड़ देंगे। अल्लाह अकबर, शायद आप समझ भी ना पाए इस बात को। ये तड़प होती, कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकता एक सच्चा मोमिन। खैर, अल्लाह ने आयतें नाजिल कर दी। कौम के साथ क्या हुआ इसको मारने के बाद? वमान जलना ला कौमिही मिन बादिही मिन जुंदि मिन अस्समा, इसके बाद हमने इसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर ना उतारा और ना इस तरह हम उतारा करते हैं। वो तो सिर्फ एक जोर की चीख थी कि यक यक वो सब के सब बुझ के रह गए। फैजा हम खामिदून, बुझते हुए अंगारे, यानी वो आवाज़ें जो अल्लाह वालों के खिलाफ बहुत बोलती थी, हक वालों के खिलाफ बोलती थी, आज उनकी आवाज़ें दब गई, खामोश हो गए। ये अल्लाह की आदत है, अल्लाह की ये सुन्नत है कि हक का साथ देता है और जो हक के खिलाफ होते हैं उनकी आवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। या हसरतन अल अलिमात मायातिहिम मिर रसूलिनिल्ला कानु बिही यस्तहज़ियून, इस दर्द को महसूस कीजिए और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अंबिया कराम कितनी मुश्किलें सह कर गए, ऐसे बंदों पर अफसोस, कभी भी कोई रसूल इनके पास नहीं आया जिसकी हंसी उन्होंने ना उड़ाई हो। क्या उन्होंने नहीं देखा कि इनसे पहले बहुत सी कौमों को हमने गारत कर दिया कि वो इनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे, और नहीं है कोई जमात मगर ये कि वो जमा होकर हमारे सामने हाजिर की जाएगी। अब ये मिसालें देखे, कायनात में से कुछ मिसालें दी जा रही हैं अल्लाह के एक होने की। वायतुलहमलरदुलमीता, और इनके लिए एक निशानी खुश्क ज़मीन है जिसको हमने ज़िंदा कर दिया और इससे गल्ला निकाला जिससे वो खाते हैं, और हमने इसमें खजूरों के और अंगूरों के बागात पैदा किए और जिनमें हमने चश्मे भी जारी कर दिए ताकि लोग इसके फल खाएं, और इसको इनके हाथों ने नहीं बनाया, फिर क्यों शुक्र गुजारी नहीं करते? सुबहानल्लज़ी खलक़ल अज़्वाजा कुल्लहा, पाक है वो ज़ात जिसने हर चीज़ के जोड़े पैदा किए, हाँ वो ज़मीन की उगाई हुई चीज़ें हों, हाँ खुद इनके अपने नफूस हों, हाँ वो चीज़ें हों जिन्हें वो ये जानते भी नहीं। वायतुलहुमुल्लैलु नस्लखु मिन्हुन्नहार, और इनके लिए एक निशानी रात है जिससे हम दिन को खींच देते हैं तो यक यक अंधेरे में रह जाते हैं, और सूरज के लिए जो मुकर्रर राह है वो इसी पर चलता रहता है। ये है अंदाज़ा मुकर्रर करदा ग़ालिब बा इल्म अल्लाह ताला का, और चांद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं यहाँ तक कि वो लौट कर पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। कल और जो निल कदीम, आखिरी रातों का चांद। ल शमसु यम बगी लहान तुदरी कल कमर, ना आफताब की ये मिजाल है कि चांद को पकड़े और न रात दिन पर आगे बढ़ जाने वाली है, और सब के सब आसमान में तैरते फिरते हैं, और इनके लिए एक निशानी ये भी है कि हमने इनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार किया और इनके लिए इस जैसी और चीजें पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं। व इन नशनो गरे खुम फला सरी हल हम भला हम युन, और अगर हम चाहते तो इनको डबो देते टाइटैनिक की तरह। मुतकब्बिरों को अल्लाह इसी तरह डबोता है, फिर ना तो कोई इनका फरियाद रस होता ना वो बचाए जा सके, लेकिन हम अपनी तरफ से रहमत करते हैं और एक मुद्दत के लिए इन्हें फायदे दे रहे हैं। और इनसे जब कभी कहा जाता है कि अगले पिछले गुनाहों से बचो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और इनके पास इनके रब की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं आती जिससे ये बेरुही ना बरतते हों, और इनसे जब ये कहा जाता है कि अल्लाह के दिए हुए में से कुछ खर्च करो, तो ये कुफार ईमान वालों को जवाब देते हैं। जरा जवाब सुनिए, आज ज़ुबाने हाल से बहुत सारे मुसलमानों का भी यही हाल है। अनुतिमु मल्लो ये शाह अल्लाह तमा, क्या तो ये कुफार ईमान वालों को जवाब देते, हम इन्हें क्यों खिलाएं, जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला पिला देता, तो तुम तो हो ही खुली गुमराही में। वयकूलून मता हज़ल वादु इन कुंतुम सादिकीन, वो कहते हैं ये वादा कब होगा, सच्चे हो तो बतलाओ। नहीं, इन्हें सिर्फ एक सख्त चीख का इंतजार है जो इन्हें पकड़ेगी, और ये बाहम लड़ाई झगड़े में होंगे। इस वक्त ना तो ये वसीयत कर सकेंगे और ना अपने अहल की तरफ लौट सकेंगे। वनुफिखा फिस्सूर, तो सूर के फूके जाते ही सब के सब अपनी कब्रों से अपने परवरदिगार की तरफ तेज तेज चलने लगेंगे। जरा इमेजिनेशन मिलाइए, क्या कहेंगे? कालू या वैलना मन बासना मिन मरकदीना, कहेंगे हाय हाय, हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने उठा दिया? जवाब, हाजमा वादर रहमान व सदकल मुरसलून, यही है जिसका वादा रहमान ने दिया था और रसूलों ने सच सच कह दिया था। बोलिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अगर अम्बिया कराम हमें ये सब ना बताते तो क्यामत के दिन तो एक धचका लगता कि ये क्या हो गया, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, और काफिर को लगेगा ये नहीं है मगर एक चीख के यकायक सारे के सारे जमा होकर हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे, यानी पेशी का वक्त आ गया। फल जाओ मला तुजलम नफ्सुन शैया वला तुजजौन इल्ला मा कुंतुम तअमलून, बस आज किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म ना किया जाएगा और तुम्हें नहीं बदला दिया जाएगा मगर सिर्फ इन्हीं कामों का जो तुम किया करते थे। 22 से 54 आयतें मैंने एक गो में पढ़ी हैं, शायद 4 से 5 मिनट लगे होंगे, और हर आयत पढ़ते हुए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह याद आ रहा था इन डेप्थ स्टडी का वो सेशन जो रमज़ान से पहले पूरा हुआ है। आप सबको दावत दूंगी, सूरह यासीन से सबको मोहब्बत होती है हम सब समेत, बहुत पढ़ी जाने वाली सूरत है। लोग कई कई तरीक़ों से इसको पढ़ते हैं, मनगढ़ंत तरीक़ों से भी पढ़ते हैं, मुबीने लगा के पढ़ते हैं, कोई एक तरीके से, कोई दूसरे से, कोई 70 दफ़ा पढ़ता, कोई कुछ पढ़ता, या उन बेचारों को नहीं पता, एक दफ़ा पूरी सूरत को इन डेप्थ स्टडी की सुन लें, एक साल में सूरह यासीन पूरी कराई है। और ये जो भी आयतें पढ़ी ना, हर दिन बस एक आयत होती थी, बमुश्किल 1 घंटे से 1.25 घंटे का सेशन होता है। नॉर्वे में हमारी रेगुलर जो क्लास चलती है ना, और रमज़ान से बिल्कुल 1-2 दिन पहले अल्लाह की रहमत से पूरी की है। यूट्यूब पे मौजूद है, ग्रीन कलर का उसका थंबनेल दिखेगा आपको। जब जैसे जिस सुन सके सुन ले, गाड़ियों में सुन ले, बैठे हुए सुन ले, थोड़ा थोड़ा करके, और कागज़ कलम लेकर सुने। हर आयत के अंदर हजारों मोती हैं, लेकिन यहाँ हमें इतना पता चला कि इस पे गौर व फिक्र करते हुए अमल के नुक्ते लेते हैं। आइए देखते हैं आयात पे अमल कैसे करेंगे। गल्ला या फल के जमीन में बोने से लेकर आप तक पहुँचने तक के तमाम मराहिल पर गौर करें और फिर अल्लाह की बेशुमार नेमतों पर इसका शुक्र करें। किसी का फीडबैक था कि अब सिंक में चावल धोते हुए भी मुझे आपकी बातें याद आ रही होती हैं, और मैं एक चावल का दाना भी सिंक में नहीं जाने देती कि ये कहाँ से चला और कहाँ आया, क्योंकि मैं ये मिसालें बहुत देती हूँ। कहाँ वो बीज पानी में लगा, कहाँ से उसकी फसल हुई, सब कर करा के फिर कटा, फिर सूखा, फिर थ्रेश किया गया, फिर उसके बाद वो दुकानों पे आया, होलसेल, होलसेल से रिटेल पे आया, रिटेल से आपके मुल्क में आया, दूसरे मुल्कों में, फिर वहाँ से आप खरीद के लाए और आपने उसको आते ही सिंक में फेंक दिया। वो बेचारा वही ना फिंक जाता, उसने जरूर नॉर्वे के सिंक में गिरना था आके, वो हाफजाबाद और वजीराबाद के ही पानियों में गिर जाता। कई इंसानों के मिसरा ना कदरी करते हैं चीज़ों की तरह। इसी तरह सुबह के वक्त ये दुआ पढ़िए, ये सुबह शाम की दुआओं में से अगली दुआ आपको सिखा रहे हैं। अल्लाहुम्मा बिका असबहना वबिका अमसैना वबिका नाहया वबिका नमोतु व इलैकल नुशूर। ए अल्लाह, तेरे नाम के साथ सुबह की और तेरे नाम के साथ शाम की, और तेरे नाम के साथ जिंदा होते हैं और मरते हैं, और फिर तेरी ही तरफ पलट कर आना है। तो इन दुआओं के तर्जुमों पर ज़रूर गौर किया करें। इसी तरह अगला अमल का नुक्ता नकलो हमल यानी ट्रांसपोर्ट के जदीद वसाइल जो अल्लाह ने हमारे लिए मुसख़र कर दिए हैं, इन पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अगर ये ना होते तो हमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। 4 से 5 घंटे में एक बंदा अपने मुल्क से उठकर सऊदी अरब आ जाता है, इंडिया से हो, पाकिस्तान से, इवन नॉर्वे से, जितनी नॉर्वे से यहाँ की फ़्लाइट है ना, इतनी यहाँ से पाकिस्तान की है, बल्कि वो ज़्यादा है। ये कैसे हुआ जहाज़ों में? एक वक्त था लोग कैसे चलते थे, कैसे घोड़ों में सवार होते, 6-6 माह लग जाते थे हज के लिए आने और जाने वालों को। तो बोलिए ये गाड़ियां अल्लाह का शुक्र, चलने का तो रिवाज ही कोई नहीं रहा। हाँ, तो अल्लाह ने जो नेमतें दी ना उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। फिर रहनुमाई, नेमतों की आजमाइश महरूमियों की आजमाइश से बहुत बड़ी होती है, इसलिए अल्लाह की पकड़ से डरते रहिए जो किसी भी लम्हे आ सकती है। अमूमन हम किसको कहते हैं आजमाइश में, जो बेचारा बीमार है, सेहत नहीं, सेहत को कितने लोग आजमाइश समझते हैं, बीमारी को समझते हैं। एक बच्ची अपने घर में खुश बाश है, उसका मियाँ उसको लेके फिर रहा है, घुमा रहा है, बड़ी खुश है वो अपने घर में, लेकिन ना नमाज ना दीन। कहते हैं बड़ी खुश है हमारी बच्ची। और एक बच्ची है जिसको किसी आजमाइश में अल्लाह ने डाल दिया, लोग कहते हैं बड़ी दुखी है। पहली आजमाइश ज्यादा बड़ी है दूसरे से, पहली में तो उसका दीन ही चला जाना है। बंदा खुश होता है ना तो आहिस्ता अल्लाह से को भी भूल जाता है दूसरे लोगों की तरह। तो नेमतों की आजमाइश ज्यादा बड़ी। और जुमला लिख लीजिए, अक्सर लोग नेमतों के पर्चे में फेल होंगे क्यामत के दिन। आजमाइशें, बीमारियां, परेशानियां, इसमें तो फितरत पे पड़े हुए पर्दे हट जाते हैं, बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है, खुशी आती है, फिर हम आपे से बाहर हो जाते हैं। नेमतों के सही इस्तेमाल से इनकी शुक्रगुजारी का हक अदा करना है। जब कोई आयत या नसीहत सुने तो इस पर दिल से मुतवज्जे हों और अमल फौरन शुरू कर दें, वरना तौफीक चली जाती है। अभी सुन रहे हैं ना, जहां जो आयत आए उस पर फौरन नियत कर लें कि अच्छा मैं इस पर इस तरह अमल करूंगी, इस पर मैं इस तरह अमल करूंगी। गौर व फिक्र की बात है, मुर्दा जमीन को जिंदा करने की मिसाल के जरिए मुर्दों को जिंदा करने की याद दिलाई गई। लोग दुनियावी मामलात और खरीदो फरोख्त में बाहम उलझे होंगे कि अचानक क्यामत आ जाएगी। ये सही मुस्लिम की रिवायतें और भी बहुत सारी रिवायतों में हमें मिलती है ये बात। रोजे मक्षर पर ईमान न लाने और तौबा न करने पर कुफार को नदामत होगी। क्यामत की शिद्दत और हौलनाकी की बदौलत काफिर को अपनी कब्र की जिंदगी ख्वाब की तरह महसूस होगी। ये जो गाना के किसने हमें ख्वाबगाहों से उठा दिया, मतलब ये कि अब आगे जितनी आजमाइश है ना उसके मुकाबले में कब्र का अजाब कुछ भी नहीं था। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह ताला सबको बचाए बुरे अंजाम से और हमें दूसरों की हिदायत का जरिया बना दे। आगे अब कुछ जन्नतियों के मशगले और कुछ और बातें 55 से। इन्ना असहाबल जन्नतिल यौमा फी शुगुलिन फाकिहून हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल-अराइकि मुत्तकीउन। जन्नती लोग आज के दिन अपने दिलचस्प मशगलों में हशाश बशाश हैं, वो और इनकी बीवियां सायों में मुसहरियों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। इनके लिए जन्नत में हर किस्म के मेवे होंगे और भी वो जो कुछ तलब करेंगे। कहाँ से ये मिला? सलामन कौलम मिर रब्बिर रहीम, मेहरबान परवरदिगार की तरफ से इन्हें सलाम कहा जाएगा। क्या बंदे की सारी जिंदगी की कोशिशें और क्या उसका रिवॉर्ड। दुआ करें अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करना जिनको तेरी तरफ से सलाम आए। इसके बरक्स वमदाजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए गुनागारो आज तुम अलग हो जाओ। कितना दुखदुख फैसला। अलविला वल बरा लिख लीजिए, अलहुब्बु फिल्ला वल बुग्जु फिल्ला। इस्लाम का दोस्ती और दुश्मनी का मेयार समझ लीजिए, वरना वहां जाके तो फिर अलग होना ही पड़ेगा। अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, ए औलाद आदम, क्या मैंने तुमसे कौलो इकरार ना लिया था कि तुम शैतान की इबादत ना करना, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वादा अलस की तरफ इशारा है जो हमारी रूहों से लिया गया, और मेरी की इबादत करना सीधी राह यही है। शैतान ने तो तुम में से बहुत सारी मखलूक को बहका दिया, क्या तुम अक्ल नहीं रखते? यही वो दोजख है जिसका तुम्हें वादा दिया जाता था अपने कुफर का बदला पाने के लिए। आज इसमें दाखिल हो जाओ और क्या होगा। अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तश्हदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। हम आज के दिन इनके मुंह पर मुहर लगा देंगे और इनके हाथ हमसे बातें करेंगे और इनके पांव गवाहियां देंगे इन कामों की जो वो करते थे। अपने हाथों को देखिए, पाँव देख सकते हैं तो उसको देखिए, और फिर समझिए कि हाथ और पाँव की गवाही इससे क्या मुराद है। वतुकल्लिमुना अयदीहिम वतश्हदु अर्जुलुहुम। इंसान की खाल यानी स्किन ऑफ ह्यूमन बीइंग एक रिकॉर्डर है जिस पर उसकी आवाज से रिकॉर्ड हो रही है। ये देखिए, ये मेरे सामने रखे फोन में आपको पता नहीं दूर से दिखता है कि नहीं, कुछ वेव्स आ रही हैं, नहीं आ रहा होगा नजर, ये रिकॉर्ड कर रहा है, ये बैकअप रिकॉर्डर है मेरा। अब इसके अंदर मैं देखिए अभी बोली ना ऊंचा हो गया, अब मैं चुप रही हूँ तो आवाज नहीं आ रही, कम आती है। जिस तरह ये हर चीज रिकॉर्ड कर रहा है ना, इसी तरह ये मेरे हाथ आपके मेरे हम में से हर एक के साथ ये होता है, ये हमारी हर चीज रिकॉर्ड करे। कल क्यामत के जिस रीप्ले का बटन आएगा, सबके सामने हमारी सारे कच्चे चिट्ठे खुल रहे होंगे। तो फिक्र लोगों की ना करें, इनकी करें। स्पाइस है, ये जासूस है जो हमारे साथ लगे हुए। और ये मजमून आगे जाके हामिम सजदा सूरत में तो बहुत खुल के आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और अगर हम चाहते तो इनकी आंखें भी नूर कर देते, फिर ये रास्ते की तरफ दौड़ते फिरते, लेकिन इन्हें कैसे दिखाई देता। और अगर हम चाहते तो इनकी जगह पर ही इनकी सूरतें मसख कर देते, ये आंख कान नाक सब खत्म होकर फ्लैट फेसेस बन जाते। फिर ना तो वो चल फिर सकते और ना लौट सकते। वह मन नो मेर किस खुफिल खल का फला या किलोन। और जिसे हम बूढ़ा करते हैं, इसे पैदाइशी हालत की तरफ फिर उलट देते हैं, क्या फिर भी वो नहीं समझते। तो लिखिए बुढ़ापे का दौर, सेकंड चाइल्डहुड, नूनक किस कुफिल खल्क। कहते हैं कि बूढ़ा दोबारा बच्चा बन जाता है। कई घरों में जहाँ बूढ़े होते हैं, ये खबरें मिलती हैं कि वो खिलौनों वाले कमरे में जाकर खिलौनों से खेलने लग जाते हैं, यानी अपने पोते पोतियों के खिलौनों से खेलते हैं। बच्चे और बूढ़े का तकाबुल जब इन डेप्थ किया था तो बहुत डिटेल से करवाया था। दो चार बातें आप भी लिख लें, बच्चा भी डिपेंडेंट, बूढ़ा भी डिपेंडेंट। दूध ही पीता है बच्चा। बुढ़ापे में भी अमूमन एक ही चीज़ जो आप हजम कर सकते हैं या निगल सकते हैं, वो दूध है। बच्चा भी जिस्म की गंदगी से बाज दफा बेन्यास हो जाता है, यूरिनेट कर देता है बिस्तर पे, पैम्पर लीक हो जाता है। बूढ़ों के साथ भी बाज आखिरी उम्र में यही प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। बच्चा बात बात पे रोता है, बूढ़ा बात बात पे रोता है। बच्चा बात को बार बार दोहराता है, बूढ़ा बात को बार बार दोहराता है। अगर आज आपके घर के अंदर कोई बूढ़ा है या बूढ़ी है, तो जाकर उनसे वही लाड कीजिए जो बच्चों से करते हैं। घर में जाते ही लोग छोटे बच्चे को का का बा बा टू 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 करते हैं ना, बूढ़ों को कीजिए, उनको ये चाहिए होता है। आपका क्या जाएगा? वो एक बार 10 दफा कहते हैं, आप 20 दफा कहने दें। एक मैसेज 6 दफा भेजते हैं, उन्हें कि 8 दफा भेजें, आपका क्या जाता है? 1 सेकंड लगता है। तो घर के बूढ़ों को बच्चा समझ ले, खुद ही उनकी बातों पे गुस्से की बजाय प्यार आने लगेगा। वमा लम नाहु शेर वमा यम बगील हु, ना तो हमने इस पैगंबर को शेर सिखाए और ना ही इसके लायक है। वो तो सिर्फ नसीहत और वाज़ह कुरान है, ताकि वो हर इस शख्स को आगाह कर दे जो जिंदा है और कुफार पर हुज्जत साबित हो जाए। अवलम यरौ अन्ना खलकना लहुम मिम्मा मिलत अयदीना अनामा, क्या वो नहीं देखते कि हमने अपने हाथों बनाई हुई चीजों में इनके लिए चौपाए भी पैदा कर दिए जिनके के ये मालिक हो गए। और इन मवेशियों को हमने इनके ताबे फरमा कर दिया, जिनमें से बास तो इनकी सवारियां हैं और बास का गोश्त खाते हैं। वलौ फीहा मनाफी व मशारिब, इन्हें इनमें से और भी बहुत से फायदे हैं और पीने की चीजें, क्या फिर भी ये शुक्र अदा नहीं करेंगे। और वो अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद बनाते हैं ताकि वो मदद किए जाएं, हालांकि इनमें इनकी मदद की ताकत ही नहीं, लेकिन फिर भी मुशरिकीन इनके लिए हाजिर बाश लश्करी हैं। फला यहज़ुन का कौलुहुम, बोलिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अल्लाह के नबी को कितना सताया इन लोगों ने कि हर थोड़े अरसे के बाद कुरान में कोई आयत आती है क्या? फला यहज़ुन का कौलुहुम, बस आपको इनकी बातें गमनाक ना करें। हम इनकी पोशीदा और एलानिया सब बातों को बखूबी जानते हैं, क्या इंसान को इतना भी मालूम नहीं कि हमने इसे नुतफे से पैदा किया है, फिर यकायक वो सरी झगड़ालू बन बैठा और इसने हमारे लिए मिसाल बयान की और अपनी असल पैदाइश को भूल गया। कहने लगा इन गली सड़ी हड्डियों को कौन जिंदा कर सकता है। कुल युशी हल्लजी अनशाहा वलम अर्रा, आप जवाब दीजिए कि इन्हें वो जिंदा करेगा जिसने अव्वल बार यानी पहली मरतबा पैदा किया, जो सब तरह की पैदाइश का बखूबी जानने वाला है। अल्लज़ी जअल लकुम मिन अश्शजरि अल-अख़ज़री नारा, वही जिसने तुम्हारे लिए सब दरख्त से आग पैदा कर दी जिससे तुम यकायक आग सुलगाते हो। अवलैसा अल्लज़ी ख़लक़ अस्समावाति वल-अर्ध बिक़ादिर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, क्या वो इन जैसों के पैदा करने पर कादिर नहीं? बेशक कादिर है, और वही पैदा करने वाला दानाव बीना है। उसकी ताकत कुदरत देखनी है तो सुन लो, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून, वो जब कभी किसी चीज का इरादा करता है तो उसे उतना ही फरमा देना काफी है कि हो जा, बस वो चीज हो जाती है। कुदरत को महसूस करते हुए दुआ कर लें कोई। ए साहिबे कुन फयकून के मालिक, आगे अपनी अपनी दुआ कीजिए। फसुबहान अल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शई कुल्ली शई व इलैही तुरजऊन। जरा देखिए सूरह यासीन किस मैसेज पे पूरी हो रही है। बस पाक है वो अल्लाह जिसके हाथ में हर चीज की बादशाहत है और जिसकी तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। तो ये है सूरह यासीन वापसी। लोग इसको मरने वालों पे पढ़ते हैं, जिंदों को जरूरत है। तदब्बुर और अमल देखते हैं आयत 55 से अनवर। अल्लाह की नेमतों को जहन में रखकर ये दुआ मांगते रहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका नाइमन ला यनफदु। ए अल्लाह मैं तुझसे वो नेमते मांगती हूँ जो कभी खत्म ना हो। शैतान के शर से हिफाजत के लिए दुआओं का एहतमाम करना। फिर इसी तरह से चूंकि इस सूरत में शैतान का तذکرہ हुआ बहकाने के रंग पे कि वो इंसानों को बहकाता है, तो ये दुआ मांग लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका अन यतखब्बतनी अश्शैतानु इंदल मौत। सूरत यासीन को जो मरने वालों के साथ रिलेट किया जाता है ना, तो उसमें एक हिकमत समझ लीजिए। मौत के करीब जब कोई बंदा होता है तो शैतान उसको आके बहकाता है, हर मुमकिन तरीके से उसको गलत जुमला बोलने पे माइल करता है ताकि इंसान का खात्मा बेसू हो जाए। तो अभी से दुआ करें कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती हूँ इस बात से कि मौत के वक्त शैतान मुझे खबती बना दे, बावला बना दे। फिर इसी तरह एक और दुआ, अल्लाहुम्मा आइनी वला तोइन अलैया वन सोरनी वला तन सोर अलैया वह दिनी व यस्सिरिल खुदा ली। ए अल्लाह मेरी मदद कर और मेरे खिलाफ किसी की मदद ना कर, मुझे हिदायत दे और मेरे लिए अपनी तरफ आना यानी हिदायत का रास्ता आसान कर दे। आमीन कहिए कुरान की महफिल में। अल्लाह कबूल कर ले तो देखिए बारे न्यारे हो जाएंगे इंशाल्लाह। आगे रहनुमाई के नुक्ते, अपने अमाल की इसलाह करनी है ताकि क़यामत के दिन हमारे आज़ा हमारे खिलाफ गवाही न दें। शेर व शायरी गानों या इसी तरह की लघवियात में मशगूल नहीं होना कि वो आपको कुरान से गाफिल कर दें। अल्लाह की रहमत ही बंदों को दुनियावी और उखरवी अज़ाब से निजात दिला सकती है। इसलिए कहिए या हय्यू या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीस। गौर व फिक्र की बातें, अल्लाह तआला अहले जन्नत की तकरीम यूं करेगा कि उनको जल्द ही जन्नत में दाखिल कर देगा। बाकी लोग अभी लाइनों में लगे हुए हैं, हिसाब किताब हो रहा है, वजन तुल रहे हैं, कोई हराम निकल रहा है, कोई मकरूह चीजें निकल रही हैं, कोई प्रोहिबिटेड आइटम निकल रहे हैं, वे कर रहे हैं, एयरपोर्ट का जहन में लिया। ये तो सब बड़े बड़े बैग जब तुलते खुलते बोलते क्या क्या होता है। और दूसरे ऐसे वीआईपी लाउंज में से हाथ में एक छोटा सा ब्रीफकेस लेके जन्नत में चले जाएंगे कि आप क्यों इंतजार करें, आप अंदर चलिए। आप मेहमान को क्या करें, आप अंदर चलिए, हम सामान खुद ही ले आएंगे, आप बैठिए, आप ना करें हम करेंगे, आप हमें दे हम करें। कितनी इज्जत करते हैं लोग मेहमान की। तो जो अल्लाह का मेहमान होगा, इसको सोच के ना आपकी रूह सरशार हो जाए। एक दफा मौत के दरवाजे से अल्लाह खैर और आफियत से गुजारते, आगे वेलकम। अब देखिए जो यहाँ से जाता है, यहाँ वाले रो रहे होते, उदास होते, परेशान, पर जिधर जा रहा होता है वो खुश हो रहे होते हैं। कई दफा आपके साथ हुआ होगा ना, आप इंडिया जाती हैं, यहाँ हो सकता है घर वाले रो रहे हो, अम्मी आप कहाँ जा रही है हमें छोड़ के, और ये और बब्बू आपके छोड़ के जा रहे, तो उधर आपकी माँ बहन खुश हो रहे होते हैं। मौत में यही होगा। इस दुनिया वाले थोड़ा सा रोएंगे वक्ती तौर पर, लेकिन जब उनको आपकी चीजें मिल जाएंगी तो खुश हो जाएंगे। जी खुश हो जाएंगे वो। 3 दिन के बाद तो अल्लाह ने भी कहा नॉर्मल हो जाओ, वहाँ खुशियाँ होंगी। और यहाँ कितनी कुछ जिंदगी, आपकी मेरी क्या उम्र होगी और आगे क्या रह गई है हमारी, आधा तो काट ही चुके ना, आगे कितनी रह गई। दुआ करें मरने के बाद कोई तकलीफ ना हो कि ला दखले ले जन्ना। फिर इसी तरह बुढ़ापे के वक्त इंसान की उम्र पलट देने की खबर से मुराद दुनिया दवाम और ठहराव की जगह नहीं है। जिंदा भी रहेंगे ना तो जिंदगी मजे की नहीं रहती। खाने होंगे खाया नहीं जाएगा, कपड़े होंगे पहने नहीं जाएंगे, बड़ा घर है तो चल फिर नहीं सकते। ये है इस दुनिया की औकात। अल्लाह ताला जमीन के तमाम हिस्सों में मदफून हड्डियों की हकीकत को जानता है, किसकी हड्डी कहाँ गिरी पड़ी है। ये जो बैक बोन का मोहरा होता है ना नीचे स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल एंड पे, ये नहीं खत्म होता, इन्हीं से क्यामत के दिन बारिश होने के बाद अल्लाह ने जिस्मों को उगाना है। कुरान की आयत आगे 30वें पारे में आएगी तो जिक्र करूंगी। तो जब अल्लाह को पता है, एक एक बीज का उसको पता है, एक एक बंदे का पता है, तो आप उससे क्या छुप सकते हैं। अफला यशकुरून, यह आयत हर घड़ी अल्लाह को शुक्र बजा लाने की अहमियत पर दलालत करती है। तो बड़ी प्यारी सूरत पूरी हुई, और अगली सूरत अब और भी खूबसूरत लगेगी आपको, क्योंकि इसमें स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, और स्टोरी तो हमेशा ही अच्छी लगती है। जरा सा समझिए, उम्मते मुस्लिमा को एक मैसेज दिया था 2वें पारे के शुरू में, वजालनाकुम उम्मतम वसता, फिर उसी पैगाम को थोड़ा सा मजीद खोला गया 4 पारा में, कुंतुम खैर उम्मत अखरिजत लिन्नास, और क्या कहा, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन, क्या काम बहुत बड़ा दिया। उम्मते मुस्लिमा को पूरी दुनिया तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का काम दिया गया। अब ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रिसालत खत्म हो गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, कारे रिसालत चलता रहेगा उम्मते मोहम्मदिया पे, खास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी। अब इस कौम को अगर इतना बड़ा काम करना है, तो उसके लिए जरूरत किस चीज की थी कि ये ऑर्गेनाइज्ड हो, डिसिप्लिन्ड हो, प्लान्ड हो, वक्त के ऊपर नजर रखने वाली हो। अल्लाह ने उस चीज को कुरान पाक में, यहाँ सूरह सौफात में, कायनात यूनिवर्स की मिसालों से, कहीं फरिश्तों की सफ़े हैं, कहीं परिंदों की सफ़े हैं, सब्जी भी उगती है, दाना भी जमीन से निकलता है तो सफ़ों में उगता है। यहाँ इस पूरी सूरत को आप देखिएगा कि उम्मते मुस्लिमा के उरूज का एक छुपा हुआ नुक्ता के बी ऑर्गेनाइज्ड, बी डिसिप्लिन्ड। और सफ के लफ्ज के साथ कुरान में दो सूरतें, यहाँ सौफात जमा में और सूरह सफ, आगे पढ़ेंगे हम जाकर 28वें पारे में। दिन में 5 नमाजों में सफ़ें बनवाई जाती हैं। इमाम साहब जमात शुरू करने से पहले क्या कहते हैं, सफ़ु सफ़ु फ़ाकु, सफ़े सीधी करो, इसका जोड़ना दिलों को जोड़ने के करीब है, और बीच के रखने दूर कर दो। और आज उस उम्मत का हाल सिर्फ बाहर पड़ी जूतियों से कोई देख ले, जो किसी मस्जिद के बाहर पड़ी होती है, या किसी जगह लाइनें लगी हुई एयरपोर्टों पे, हमारी लाइनों को कोई देख ले, लाइन में खड़ा बंदा बेवकूफ है, क्योंकि वो कब से खड़ा है, और कोई पीछे से आगे झपट के आगे आ गया, इधर से आगे वो चले गया, आप बुद्धू बन के खड़े रहे। ये हमारी उम्मत का इस वक्त का प्रॉब्लम। सिर्फ एयरपोर्ट चेंज होता है, जहां से गए डिसऑर्गेनाइज्ड, और जहां उतरे वहां जाकर देखा करे कैसे क्यूस लगती है। अल्लाह क्यों ना तरक्की दे उनको। आप याद रखिए, कुफर की वजह से अल्लाह तरक्की नहीं दे रहा है नॉन मुस्लिम्स को, उन खूबियों की वजह से दे रहा है जो इस्लाम ने मुसलमानों को सिखाई थी। आइए अब सारी तमहीद के बाद इसको पढ़ते हैं, 182 आयतें, छोटी छोटी आयतें इस सूरत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्साफाति सफा, फज्जाजिराति जजरा, कसम है सफ बांधने वाले फरिश्तों की, फिर पूरी तरह डांटने वालों की, फिर जिक्र अल्लाह की तिलावत करने वालों की, यकीनन तुम सब का माबूद एक ही है। यानी कलमा तौहीद, इसकी सच्चाई के लिए 3 कसमें खाई गई। यकीनन तुम सब का माबूद एक ही है, आसमानों और जमीन और इनके दरमियान की तमाम चीजों और मशरिकों का रब वही है। हमने आसमाने दुनिया को सितारों की जीनत से आरास्ता किया, और हिफाजत की सरकश शैतान से, आलमे बाला के फरिश्तों की बातों को सुनने के लिए वो कान भी नहीं लगा सकते, बल्कि हर तरफ से वो मारे जाते हैं भगाने के लिए, और इनके लिए दायमी अजाब है, मगर जो एक आध बात उचक ले भागे तो फौरन इनके पीछे दहकता हुआ शोला लग जाता है। इन कुफार से पूछो तो कि आया इनका पैदा करना ज्यादा दुश्वार है या उनका, जिन्हें हमने इनके अलावा पैदा किया। हमने इंसानों को लेसदार मट्टी से पैदा किया, बल अजिबता व यसखरून, बल्कि तू ताज्जुब कर रहे और ये मसखरापन कर रहे हैं। और जब इन्हें नसीहत की जाती है तो ये नहीं मानते, और जब किसी मोजजे को देखते हैं तो मजाक उड़ाते हैं। वकालु इन हाज़ा इल्ला सिहरुन मुबीन, ये वो सारी बातें जो नबी के खिलाफ करते थे, बातें छांटते थे प्यारे नबी पे, और कहते हैं ये तो खुल्लम खुल्ला जादू ही है, क्या जब हम मर जाएंगे और खाक और हड्डी हो जाएंगे तो क्या फिर सचमुच हम उठाए जाएंगे, क्या हमसे पहले के हमारे बाप दादा भी आप जवाब दीजिए नाम। हाँ वन तुम दाखिरून, और हाँ और तुम जलील भी हो गए, खुल के बता दोगे यस तुम्हारे बाप दादा का अकीदा गलत था, और अगर आज जानते बूझते तुम उसी पे चलोगे तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा। फइन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा, वो तो सिर्फ एक जोर की झिड़की है कि यकायक वो देखने लगेंगे, क्यामत आएगी सारी हकीकतें खुल जाएगी, कौन हक पे था कौन बातिल पे था और क्या होगा उस दिन। वकालू या वैलना हाज़ा यौमुद्दीन हाज़ा यौमुल फ़स्ल लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून, और कहेंगे कि हाय हमारी खराबी, यही जजा सजा का दिन है, यही फैसले का दिन है जिसे तुम झुठलाते रहे। उहशुरु लज़ीना ज़लमू वअज़वाजहुम वमा कानू यअबुदून, ज़ालिमों को और इनके हमराहियों को और जिन जिन की वो अल्लाह के अलावा परस्तिश किया करते थे, इन सब को जमा करके इन्हें दोज़ख की राह दिखा दो। फ़हदूहुम इला सिरातिल जहीम, एक था सिरात मुस्तकीम और यह है सिरातुल जहीम, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अल्हम्दुलिल्लाह 23 सूरह साफात पे पारा रुक हुआ, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह अला नेमतिल कुरान, और आगे सुनिए आप वहां और क्या होने वाला है। वकिफूहुम इन्नहुम मसूलून, और इन्हें ठहरा लो इसलिए कि इनसे जरूरी सवाल जवाब किए जाएंगे। जहन में शायद को पढ़ के एयरपोर्ट पे एक मंजर जहन में आता है, कोई जा रहा है और कोई कहता है रोको इनको काउंटर पे ले जाओ, कोई अब इनके पेपर में मसला है कोई इशू है। एयरपोर्ट पे तो कोई नाम ले दे किसी का तो जान निकल जाती है उस बंदे की, अल्लाह खैर करे क्या बला निकल आई। क्यामत के दिन कहा जाएगा रोक लो स्टॉप स्टिल स्टॉप, और अगर कोई ना रुके किसी पुलिस के कहने पे तो जहाज में नहीं जेल में डाल दो इसको। अल्लाह इनसे सवाल करवाने लगा, क्या मान लकुम ला तनासरुन, तुम्हें क्या हो गया इस वक्त तुम एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते। बल हुमुल यौम मुस्तस्लिमून, बल्कि वो सब के सब आज के दिन बहुत फरमाबरदार बन गए हैं। ये है शुक्र, आज भीगी बिल्लियां बन गए हैं, आज सरेंडर कर रहे हैं, आज सुलह करना चाह रहे हैं। सारी जिंदगी तो ये इस्लाम के खिलाफ बोलते रहे, नबियों के रास्ते में रोड़े अटकाते रहे। बकबल अबादू मल आबादी ये तो सालून, वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर सवालों जवाब करने लगेंगे। अब सुनिए जरा इनके सवाल जवाब। कालू इन्नकुम कुन्तुम तातूनना निल यमीन, कहेंगे कि तुम तो हमारे पास हमारी दाई तरफ से आते थे। वो जवाब देंगे नहीं बल्कि तुम ही ईमानदार न थे, और कुछ हमारा जोर भी तो तुम पर था नहीं, हाँ बल्कि तुम खुद ही सरकश लोग थे। आपको टोन से समझ आए, एक दूसरे पे इल्जाम डाल रहे हैं, वो आप पे डाल रहे हैं आप उस पे डाल रहे हैं, एक दूसरे को बुरा बुला कह रहे हैं तुम थे जिसकी वजह से आज हम इस बुरे अंजाम पे आ गए। दूसरा कहेगा नहीं तुम थे, वो कहते हैं हम तुम्हें मजबूर तो नहीं करते, लेकिन हकीकत क्या। फहक अलैना कौलु रब्बिना इन्ना लज़ाइकून, अब तुम सब पर हमारे रब की ये बात साबित हो चुकी कि हम अजाब चखने वाले हैं, यदि हम सब फेल हो चुके। बस हमने तुम्हें गुमराह किया, हम तो खुद भी गुमराह ही थे, ये कन्फेस कर रहे हैं इकरारे जुर्म। बस आज के दिन तो सब के सब अजाब में शरीक हैं, हम गुनाहगारों के साथ इसी तरह किया करते हैं। ये वो लोग हैं कि जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं तो ये सरकशी करते थे और कहते थे क्या हम अपने माबूदों को एक दीवाने शायर की बात पर छोड़ दें। नहीं नहीं बल्कि नबी तो हक यानी सच्चा दीन लाए हैं और सब रसूलों को सच्चा जानते हैं। यकीनन तुम दर्दनाक अजाब का मजा चखने वाले हो, तुम्हें इसी का बदला दिया जाएगा जो तुम किया करते थे। ये है तस्वीर का एक रुख। दुआ करें अल्लाह हमें हमारे प्यारों को किसी को इस अंजाम से दोचार ना करे, तो किससे करे। अब आइए जरा पारे के थीम पे, इखलास मुखलस बनना, अल्लाह ताला के दिए हुए इस दीन पर बगैर किसी नफे नुकसान की फिक्र किए तन मन धन से चलते जाना।